आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में हुई हिंसा को लेकर की बैठक। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। सर्वोच्च न्यायालय से आजम खान को नहीं मिली राहत। जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज। महाकुंभ के लिए प्रयागराज के 9 प्रमुख रेलवे स्टेशनों की सुविधा और क्षमता में किया जा रहा विस्तार। 992 मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन की तैयारी। और उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच लखनऊ में खेला गया रणजी ट्रॉफी मुकाबला हुआ ड्रॉ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में हुई हिंसा की घटना को लेकर कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। बहराइच के हरदी क्षेत्र में एक दिन पूर्व दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई झड़प में एक युवक की मौत के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, जो अब नियंत्रण में है। अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने कल बहराइच पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि
बहराइच में हुई घटना के बाद पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही हरदी थाना के प्रभारी निरीक्षक सहित 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। गोलीबारी में मारे गए युवक का कल दोपहर उनके गांव रेवा मंसूर में पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया गया। घटना स्थल से 15 से 20 किलोमीटर तक आसपास आगजनी व पथराव किया गया है। स्थिति को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। फिलहाल आला अधिकारी बहराइच में मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अखिलेश श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार सेवा, बहराइच।
हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदेश की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है और स्थिति सामान्य हो रही है। बहराइच मामले में 6 लोगों और कई अज्ञात उपद्रवियों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने और नफरत फैलाने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश के साथ बहराइच में कैंप कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने कल हुई सुनवाई में प्रदेश सरकार से कहा कि वो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों का प्रवेश दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में सुनिश्चित करे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रदेश सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कल कोविड-19 वैक्सीन के कारण रक्त के थक्के जमने जैसे दुष्प्रभावों का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए दायर की गई थी। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज के 9 प्रमुख रेलवे स्टेशनों की सुविधा और क्षमता में विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रयागराज जंक्शन, सुबेदारगंज जंक्शन, नैनी जंक्शन, छिबकी जंक्शन, रामबाग जंक्शन, झूसी जंक्शन, फाफामऊ जंक्शन, प्रयाग जंक्शन और प्रयागघाट जंक्शन पर मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। महाकुंभ के लिए रेलवे 992 मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। एक रिपोर्ट।
महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन मिलकर व्यापक तैयारियां कर रहे हैं। प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों की क्षमता और सुविधाओं में विस्तार के साथ विशेष ट्रेनों का संचालन, पैदल मार्ग की व्यवस्था और आपातकालीन योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रेलवे स्टेशनों पर 90 होल्डिंग एरिया चिन्हित किए हैं। इन होल्डिंग एरिया में आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को रोका जा सकेगा, ताकि स्टेशन पर भीड़ का दबाव कम रहे और यात्रा सुगम हो। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र तक पहुंचने में कोई समस्या न हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन से मेला क्षेत्र तक पैदल मार्ग की भी व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी लखनऊ के समाचार कक्ष से मैं तनवीर फातिमा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_JKP पर भी उपलब्ध है। रेलवे ने लालकुआं से मुंबई के लिए बांद्रा लालकुआं सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन शुरू करने का फैसला किया है। ट्रेन का ठहराव मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर भी दिया गया है। मुरादाबाद और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में व्यापारी मुंबई आते हैं। पहले उन्हें मुंबई जाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब मुरादाबाद में इस ट्रेन का स्टॉपेज होने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। मुरादाबाद डिवीजन के DCM आदित्य गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी।
एक गाड़ी का बोर्ड से अभी अप्रूवल हुआ है, ये सप्ताह में एक बार चलेगी। इसका इनॉग्रेशन वाला जो रन है, जो पहला रन है, वो कल बांद्रा स्टेशन से हुआ था और आज ये गाड़ी शाम 5:10 पे मुरादाबाद में आएगी शेड्यू और ये फर्दर जाके लालकुआ में टर्मिनेट होगी। उसका नोटिफिकेशन अभी निकलना ड्यू है, ये निकलते ही इस गाड़ी की रेगुलर रनिंग चालू हो जाएगी।
ग्रेटर नोएडा में यातायात प्रबंधन को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही इंटीग्रेटेड एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना करेगी। 22,760 करोड़ रुपए की इस परियोजना में ग्रेटर नोएडा के 357 लोकेशंस पर हाई क्वालिटी CCTV सर्विलांस कैमरों की स्थापना की जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रेरणा सिंह ने इस बारे में अधिक जानकारी दी।
इसमें एक ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ही बिल्डिंग में संचालित होगा। 2700 कैमरे हैं जो अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। ये 4 मेगापिक्सल के डे एंड नाइट फिक्स्ड कैमरे हैं और इसी के साथ PTZ कैमराज भी हैं जो 30x जूम के साथ हैं।
बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह में 94 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 187 शोधार्थियों को PhD की उपाधि राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में प्रदान की गई। अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह आगामी 21 अक्टूबर को आयोजित होने जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ होंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आज भदोही में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ करेंगे। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित मेले में देश भर से 260 कालीन निर्यातक अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इस कालीन मेले में 67 देशों के 500 खरीदार शामिल होंगे। प्रदेश में बीते 36 घंटों के दौरान अलग अलग सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में हाईवे पर ट्रक और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं कौशाम्बी के मंझनपुर थाना क्षेत्र में टिकरी टेवा गांव के रहने वाले 4 लोग रविवार रात बाइक से धाता फतेहपुर जा रहे थे। बाजापुर गांव के पास बाइक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई, इससे एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोगों ने अस्पतालों में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दुर्घटनाओं का दुख जताया है। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश को हराकर 29वीं सीनियर महिला नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की ग्रुप सी प्रतियोगिता जीत ली है। ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में कल खेले गए मैच में रेलवे की टीम ने उत्तर प्रदेश की टीम को 6-0 से पराजित कर दिया। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच खेला जा रहा रणजी ट्रॉफी मुकाबला ड्रॉ हो गया है। कल की पारी में यूपी के बल्लेबाज प्रियम गर्ग ने नाबाद 105 रन बनाए। इससे पहले बंगाल की टीम ने उत्तर प्रदेश के सामने जीत के लिए 274 रन का लक्ष्य रखा था। बंगाल ने चौथे दिन 3 विकेट पर 254 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी थी। जवाब में अपनी दूसरी पारी में उत्तर प्रदेश की टीम ने 6 विकेट खोकर 162 रन बनाए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में हुई हिंसा को लेकर की बैठक, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। सर्वोच्च न्यायालय से आजम खान को नहीं मिली राहत। जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज। महाकुंभ के लिए प्रयागराज के 9 प्रमुख रेलवे स्टेशनों की सुविधा और क्षमता में किया जा रहा विस्तार। 992 मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन की तैयारी और उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच लखनऊ में खेला गया रणजी ट्रॉफी मुकाबला हुआ ड्रॉ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।